हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जद वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः स्वे स्वे काले गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च।
अनुवाद। भगवान के भय से वृक्ष लताएं जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपने अपने ऋतु में फूलते और फलते हैं। तात्पर्य, जिस प्रकार भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय अस्त होता है और निर्धारित समय से ऋतु परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह सामयिक पौधे फूल औषधियां तथा वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे अकारण ही और स्वतः बढ़ते हों, जैसा कि नास्तिक कहते हैं, अपितु वे भगवान के परम आदेशानुसार बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
माता देवहूति भगवान कपिल देव से तीन बातें जानना चाहती हैं। लास्ट में भक्ति योग से मे मार्गम ब्रूही विस्तर स प्रभु। हे प्रभु, आप भक्ति योग के मार्गों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। अब दूसरा प्रश्न है कि विरागो जैन पुरुषो भगवान सर्वतो भवेत आचक्ष जीव लोकस्य विविधा मम संस्कृति। जीव इस प्राकृत जगत में किनकित संस्कृति में अवस्थाओं में गुजरता है, इसे वर्णन कीजिए। इसको सुनने से व्यक्ति को विषयों से वैराग्य हो जाता है। और तीसरा जिज्ञासा का विषय था कि काल से स्वर रूपस्य परेशान च परस्यते स्वरूपम बत्कुर्वन्ति जद्धेतो कुशलम जना। जिसके भय से लोग अच्छा कर्म करते हैं तो उस काल का स्वरूप बताइए। काल का क्या स्वरूप है? भगवत गीता में जिन पांच विषयों का वर्णन भगवान ने किया है उसमें काल एक विषय है। तो काल देखने में नहीं आता है, लेकिन इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। तो माता देवहूति पूछ रही हैं कि काल का क्या क्या प्रभाव है, क्या काम है, बताइए। तो भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में इस वर्णन कर रहे हैं। 35वें श्लोक से लेकर के और अंत तक। रूप भेदास्पदम कालम रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते। जो भौतिक वस्तुओं के रूप में परिवर्तन करे उसको काल कहते हैं। रूप भेदास्पदम, रूप भेद कहते हैं वस्तुओं के परिवर्तन को, चेंज को। जिस प्रकार हम लोगों का यह शरीर है, बिल्कुल प्रारंभ में माता के गर्भ में रहता है, बिल्कुल छोटा है। वहीं गर्भ में भी शरीर बदलता है, शिशु का रूप धारण करता है और उसके बाद जन्म होता है। माता के उदर से बच्चा बाहर आता है और उस समय भी शरीर बदलता रहता है। फिर कुमारावस्था आती है, यौवन अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और अंत में शरीर पंचभूतों में मिल जाता है। आत्मा पर काल का प्रभाव नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं विनाशम अप्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। इस आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है, काल भी नहीं, भगवान भी नहीं करेंगे। पर शरीर विनाशी है और काल के पंजे में है, काल का प्रभाव है इस संपूर्ण प्राकृत जगत में, काल परिवर्तन करता रहता है, सृष्टि करता है और विनाश भी करता है, पालन पोषण करता है, यह काल का प्रभाव है। काल ही प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा करके सृष्टि करता है। प्रकृति के गुण जब साम्य अवस्था में रहते हैं, सतगुण रजोगुण तमोगुण तीनों एक समान रहते हैं, तो उस समय सृष्टि सस्पेंड हो जाती है, कोई काम नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई क्रिया नहीं। लेकिन जब काल प्रकृति के गुणों में विषमता पैदा करता है, कोई गुण बढ़ जाता है, कोई घट जाता है, तब क्रियाएं चालू हो जाती हैं। बारंबार श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान अपनी प्रकृति को क्षुभित करते हैं काल शक्ति द्वारा। तो काल ही जगत की सृष्टि करता है, जगत को चलाता है और ध्वस्त कर देता है। अधिकांश लोग काल के इस विनाशक प्रभाव को जानते हैं और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए वे बहुत डरते भी हैं। लेकिन काल भगवान का प्रतिनिधि है, काल से भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक काल में भगवान का स्मरण करना चाहिए। काल खतरनाक नहीं है, यही इस जगत का पालन पोषण कर रहा है। सबसे पहला काम है शरीर को जन्म देना है। उपनिषद में कहा गया है, उपनिषद वेदों का अंश है, जिस प्रकार भगवद गीता महाभारत का एक अंश है भीष्म पर्व में, उसी प्रकार से उपनिषद वेद का अंग है। जैसे कठोपनिषद साम वेद से आया है, श्वेताश्वतर ऋषि श्वेताश्वर उपनिषद बनाए हैं, वो वेद से लिया गया है। तो उपनिषद में कहा गया है बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञय सचानंत्याय कल्पते। जीव है बहुत छोटा है, लेकिन उसी को ये काल द्वारा विविध शरीर दिया जाता है। बालाग्र सतभागस्य, बालाग्र किसी बाल के केश के अग्र भाग को जो बहुत सूक्ष्म होता है, केश का अग्र भाग, यदि किसी प्रकार से उसके 100 टुकड़े किए जाएं, अति ऐसा होना कठिन है, परंतु फिर भी मान लीजिए यदि केस के अग्र भाग को 100 टुकड़ा किया जाए और उसमें से फिर एक टुकड़े को सत्ता कल्पिता सचा, फिर 100 टुकड़ा किया जाए तो इतना सूक्ष्म इतना छोटा जीव है, तो केस के अग्र भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। केस का बिल्कुल अग्र भाग इसके 10,000 भाग कीजिए, कोई जंत नहीं है, किया नहीं जा सकता, माना जा सकता है कि मान लीजिए हाँ ऐसा है। केस के अग्र भाग के 10,000वें भाग के बराबर जीव का स्वरूप है, भले वो हाथी के शरीर में है या मनुष्य के शरीर में, लेकिन है बहुत सूक्ष्म जीव। तो ऐसे जीव को माया शक्ति किस तरह से गर्भ में रखती है, भगवान कपिल देव इसका वर्णन किए हैं। जीव है इतना सूक्ष्म है, लेकिन स अनंताय कल्पते, या संख्या में अनंत है, इसको गिना नहीं जा सकता। तो ऐसे सूक्ष्म जीव को नारी पुरुष के संगम के समय माया शक्ति, मतलब भगवान की का जो प्रभाव है काल, उसके द्वारा पुरुष के वीर्य के एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु अंश पर इस चेतन जीव को बैठा दिया जाता है और वह माता के गर्भ में चला उदर में चला जाता है, और वहां प्रवेश करने पर फिर शरीर बनने लगता है। आत्मा की उपस्थिति ध्यान रखना चाहिए, काल एक आइटम है, काल के प्रभाव से बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा और जीव की उपस्थिति के कारण और सर्वोपरि तो श्री भगवान की उपस्थिति के कारण उस जीवात्मा का शरीर बनने लगता है। बालाग्र सतभाग श्रद्धा कल्पित सतः केस के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर है, वह सूक्ष्म है छोटा है, तो उसका शरीर धीरे धीरे बनने लगता है। आत्मा में परिवर्तन नहीं है, आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर बढ़ने लगता है, यह काल का प्रभाव है। और बढ़ते बढ़ते वह शरीर कुछ बड़ा होता है, उसी गर्भ में काल के द्वारा ये व्यवस्था है कि माता के पेट में बच्चे को भोजन मिलेगा। भगवान कपिल देव कहते हैं कि पंचभी क्षुत्रिरुद्भव, जब 5 महीने का बच्चा होता है तब उसको भूख और प्यास लगती है, तो खाए कहां से। जो माता के उदर में से आमाशय और छोटी आंत के मध्य में एक नाली निकाली जाती है माता के उदर से, और वो नाली जा करके उस छोटे से शरीर वाले बच्चे के नाभि में जम जाती है, और यहां से माता जो कुछ खाती है उसी में रस बनता है, वो रस बच्चे के शरीर में दिया जाता है, तो इस तरह वो खाता है पीता है। 5 महीने गर्भ में खा करके हम लोग आए हैं, अब तो कोई स्नान तिलक का तो कोई प्रश्न नहीं है। उसी दुर्दशा में हम लोगों का पालन हुआ है, शरीर बना है। तो इस तरह जीव के शरीर का निर्माण हुआ। फिर बच्चे का जन्म होता है और वह माता की गोद में बढ़ने लगता है। ये विचित्र सृष्टि है और यह ऐसा हो रहा है कि लगता है कि अपने आप हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है। और उपनिषद में कहा गया है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान का कोई कार्य नहीं है, वो अपने धाम में निष्क्रिय रहते हैं, केवल बांसुरी बजाते रहते हैं और इस जगत की सृष्टि होती रहती है, पालन होता रहता है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तो उनके पास कोई हथौड़ा है या कुछ बनाने का औजार है, करणम, उनको करण नहीं है, उनका काम कुछ नहीं है, लेकिन परास शक्तिर विविधैव श्रूयते। ऐसा सुना जाता है कि अस्य इनकी पराशक्ति विविध प्रकार की है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, स्वाभाविकी स्वाभाविक बल और क्रिया है। संसार में जो कुछ हो रहा है तो वास्तव में एक प्रकार से भगवान कर रहे हैं, लेकिन अलक्षित सब करते रहते हैं। इसीलिए नास्तिकों को ये भ्रम हो जाता है कि कोई करने वाला है नहीं, कोई बनाने वाला है नहीं, ये अपने आप सब हो रहा है, क्योंकि बनाने वाला दिखता नहीं है, कोई औजार नहीं है उसके पास। तो ऐसी सृष्टि भगवान ने की है, अपने आप चलता रहता है, परास शक्ति विविधय श्रूयते, ऐसी अद्भुत शक्ति है। तो भगवान की शक्तियों में, विशेषताओं में काल खास उनका रिप्रेजेंटेटिव है, काल के द्वारा सब हो रहा है। इस श्लोक में जो लिखा गया है भगवान कपिल देव कहते हैं, जद वनस्पतयो भीता, जिसके भय से वनस्पतय बड़े बड़े वृक्ष लता औषधि स, और लताएं और औषधियां मतलब अन्न, औषधि का अर्थ होता है जो प्राणियों के लिए उपजीव्य है, जैसे गेहूं, धान, चावल, चना, मटर इत्यादि, औषधि इनको कहा जाता है। तो लताएं पेड़ बढ़ रहे हैं, विविध प्रकार से भगवान जन्म दिए हैं। इस संपूर्ण भूमंडल पर सब जगह वृक्ष हैं, इन वृक्षों को कोई रोपने नहीं जाता है और कोई सिंचाई नहीं करता है, लेकिन भगवान सब करते हैं। ये वृक्ष उगते हैं, लताएं उगती हैं और अन्न, इसके साथ हर्बल्स, औषधि, औषधि का एक अर्थ होता है जड़ी बूटी, लेकिन यहां पर जड़ी बूटी ही अर्थ नहीं है। अर्थ है कि जितना भी फसल होता है, जितनी भी फसल होती है, अनाज होता है, और सब काल भगवान पैदा करते हैं। स्वे स्वे काले ये सभी लोग, ये सभी लता पता वृक्ष अनाज अपने अपने समय पर स्वे स्वे काले अपने अपने उचित काल जो भगवान ने अपॉइंटेड काल किया है दिया है अपने अपने काल पर ये अभिग्रहणते ग्रहण करते हैं फल देते पुष्पाणी च फलानी च बहुत से पुष्प और फल देते हैं। भगवान गेहूं दे रहे हैं, भगवान चावल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, तब हम लोग जी रहे हैं। ये सब वस्तुएं पेड़ पौधों से आती हैं, लेकिन सब भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार। भीता का अर्थ है डरे हुए, डरे हुए का यह मतलब नहीं है कि ये भय से कांप रहे हैं, भगवान की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किए हैं। प्रत्येक चीज गेहूं का एक पौधा वो भगवान की आज्ञा के अनुसार फलानी फल दे रहा है या चना फल रहा है। ये वृक्ष इस धरती पर उगते हैं और वर्षों तक, कई वर्षों तक रहते हैं। कोई कोई पौधे बहुत कम उम्र के होते हैं, एक बार में फल दे करके सूख जाते हैं, जैसे गेहूं चना आदि ये एक बार फसल दे करके सूख जाते हैं। इसीलिए वैदिक ग्रंथ है इनको सस्य कहता है। सस्य, सस्य का अर्थ है हत्या करने योग्य, इनको खाया जा सकता है, लिया जा सकता है, काटा जा सकता है। और कोई कोई वृक्ष है कई वर्षों तक रहते हैं, कई वर्ष तक रहते हैं और हरेक वर्ष बहुत सा फल देते हैं, फूल देते हैं, धरती से अपना आहार खींचते हैं और आकाश से भी, और झूमते रहते हैं, लहराते रहते हैं बड़े बड़े वृक्ष। समस्त प्राणियों के हित के लिए वे लकड़ी देते हैं, छाल देते हैं और फल फूल आदि तो देते ही हैं। इनका जीवन दूसरों के लिए है, इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु वैष्णवों के गुरु रूप में घास और वृक्ष को ही स्वीकार किए हैं। तरो दिवस सहिष्णु न, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए, और ऐसा हो करके तब कीर्तनियों सदा हरि, भगवान का सदा कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को वैष्णवों के लिए आदर्श से यही तिनका मिला, त्रिणादपि सुनिश्चिना और तरो रिवसाय सुनना, और सहनशीलता में वृक्ष आदर्श मिले। तो ये सब फल फूल देते रहते हैं, वर्ष वर्ष में हमेशा और कई वर्षों तक, यह सब भगवान की व्यवस्था है। भगवान काल सब व्यवस्था करते हैं। देखते हैं स्वेसे काले अपने अपने ऋतु में अपने आप फूल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं। तो काल द्वारा भगवान जगत की सृष्टि किए हैं और समस्त प्राणियों के भोजन की व्यवस्था वही किए हैं। कोई वृक्ष के भीतर हम प्रवेश करके उसको फल देने के लिए बाध नहीं करते हैं। जो फल देता है उसका जब समय आ जाता है तो अपने आप फल लग जाते हैं, बहुत मधुर मधुर फल, रसीले फल दे करके समस्त प्राणियों का उपकार करता है। समग्र मानव जाति का भी। तो भगवान कपिल देव यहां यही वर्णन कर रहे हैं कि काल के भय से, भगवान के नियम के अनुसार ये सभी संसार में वस्तुएं चल रही हैं। जद भयात वाति वातो यम सूर्यस तपति जद भयात, हवा चल रही है ये काल के भय से, काल के अनुशासन में चल रही है। सूर्यस तपति मद जद भयात, सूर्य तप रहा है, आकाश में तैरता है, बहुत तेज गति से चलता है सूर्य, सारे जगत में प्रकाश देना है, प्रकाश देना है और ताप देना है और समस्त प्राणियों को जीवन दान देना है। सूर्य घूमता रहता है, किसकी आज्ञा से? क्या किसी मनुष्य की आज्ञा से? नहीं, भगवान की आज्ञा से। सूर्य पृथ्वी से 9,28,30,000 मील दूर है, इतना दूर से प्रकाश फैला रहा है, इतना प्रकाश आता है जिसको हम लोग सह नहीं पाते हैं ताप, और कितना दूर से 9,28,30,000 मील दूर। इतना दूर से प्रकाश दे रहा है, प्रकाश के बिना हम लोग मर जाएंगे अंधकार में और ठंडा से। तो सब कर्म करने की शक्ति देता है प्रकाश सूर्य, इसके साथ वर्षा सूर्य के कारण होती है। ये सब भगवान की व्यवस्था है। पद पद में हमें कृतज्ञ होना चाहिए, एक एक व्यवस्था देख करके भगवान को नमस्कार करना चाहिए, और यह नहीं कह देना चाहिए कि अपने आप सब हो रहा है, अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा है, सब भगवान के निर्देशन में और भगवान के द्वारा अपॉइंटेड विधि से सब हो रहा है। इसीलिए जीवन में प्रत्येक क्षण हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान बहुत हमारा हित कर रहे हैं, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप से हैं, ज्ञान देने के लिए, स्मृति देने के लिए, और बाहर भी सारी व्यवस्था कर ही रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं सांस लेने के लिए। यदि हवा न रहे तो हम मर जाएंगे। मद जद भयात बाति वातो यम सूर्यस तपति मद जद भयात, जद भयात वर्षते देवो भगणो जात भाति जद भयात। भगण सूर्यास्त हो जाने के बाद हम रात्रि में आकाश में देखते हैं अनेक तारे, और समस्त रात्रि को ज्योत्सनामयी कर देते हैं, प्रकाश फैलता है, चंद्रमा उगता है। ऐसा कहा गया है, वैज्ञानिक गण कहते हैं कि सूर्य से भी बड़े बड़े लोक हैं ऊपर, स्वर्ग लोक, स्वर्गीय लोक हैं, सूर्य से भी बड़े बड़े लोक, वहां खचाखच देवता भरे पड़े हैं। सब जगह, केवल इस पृथ्वी पर ही धक्का नहीं है। जैसे भीड़ भाड़ देखते हैं ना गिरिराज में और सारे लोक में बहुत जीव हैं और बहुत श्रेष्ठ लोग हैं और सब व्यवस्था भगवान किए हैं, वहां भी खाने की व्यवस्था है, पहनने की, रहने की, यहां से लाखों गुना ज्यादा सुंदर व्यवस्था है स्वर्ग में। इसीलिए सामान्य लोग स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। स्वर्ग में बहुत बड़ा सुख है। भगवान गीता में कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्ग का विशाल सुख है, बहुत अधिक सुख है। पर एक दोष है, भागवत में कहा गया है कि वहां पर सतिशयता का दोष है। स अतिशयता, अतिशयता का अर्थ है कि कुछ देवता हमेशा इस भाव में रहते हैं कि हमसे ज्यादा भोग मिला है कुछ दूसरे को, तो हमको जितना भोग मिला है उसमें हम सुखी नहीं रहते हैं, दूसरे का सुख देख करके स्पृहा होती है, ये बहुत बड़ा दुख है। तो जो अपने को भोग मिला है स्वर्ग में वो इस पृथ्वी की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। वहां का बगीचा और वहां की स्त्रियां, तरुणी, वहां का विमान, वहां का रहने का घर यहां से लाखों गुना बेटर है, लेकिन वहां सतिशयता है, अपने अपने कर्म के अनुसार सब भोग मिलते हैं। तो जिसको कुछ बेटर मिला है उसी बेटर पर ही दृष्टि रखता है, हाय हमको ये नहीं मिला है, हमको बगीचा इतना सुंदर नहीं मिला जितना इंद्र को मिला है, या हमको हमारा विमान उतना अच्छा नहीं है जो दूसरे का है, कि इस तरह निरंतर विषय भोग की लालसा बनी रहती है और अभाव का अनुभव होता रहता है, कमी का अनुभव होता रहता है, इसलिए वहां सुख भोग नहीं पाते हैं और अंत में पूर्ण क्षय हो जाता है और फिर इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। तो सबसे बुद्धिमानी यह है कि हम इस क्षणिक जीवन में बहुत कम दिन जीना है, ये पहले विचार करना चाहिए, बहुत कम दिन जीना है और जीवन के कुछ वर्ष गिने गिने हैं, कुछ ही साल तक जीना है और वह जीवन अनेक बाधाओं से, अनेक कष्ट से भरा पड़ा है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी भगवान का भजन करके और हमें मुक्ति पाना चाहिए, मोक्ष पाना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए। यहां व्यवस्था भगवान सब किए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन यह तो नाशवान है, दुख से पूर्ण है। यहां के भोगों में हमेशा अपूर्णता है। भगवान सब व्यवस्था किए हैं लेकिन वो व्यवस्था केवल जीने के लिए है कि जी करके हम भगवान का स्मरण करें और ये सोचेंगे कि हम यहां सुखी हो जाएंगे भोग भोग करके, ये कभी संभव नहीं। हम और अधिक दुखी होकर जाएंगे, सुखी नहीं होंगे। सुखी तब होंगे जब भगवान का नाम जपेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे
जय राधे जय श्रील प्रभुपाद। हाँ ठीक है, 20 मिनट बाकी है, तो कोई आवश्यक प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। दोनों तो प्राकृत है, भौतिक दोनों है, लेकिन स्वर्ग का सुख है तो ज्यादा काल तक रहता है और उत्कृष्ट है। जैसे यहीं लीजिए, यहां पर एक सुअर के भोग में और मनुष्य के भोग में थोड़ा अंतर है ना। सुअर भी खाता है और आदमी भी खाते हैं, तो इस तरह से स्वर्ग में भी भोजन है, भौतिक भोजन है और मनुष्य भी खाते हैं, उनमें अंतर है। स्वर्ग के सुख में और पृथ्वी के सुख में बहुत अंतर है।
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज, जो श्लोक में बताया गया है कि भय से मेरे भगवान कहते हैं कि अनाज उगते हैं, सब फल वनस्पतियां सब, तो फिर अभी ऐसे कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि भगवान की आज्ञा से ही सब होता है, फिर भी हमारे संसार में देखते हैं अनाज की अभाव होती है। अनाज के अभाव होती है, वो भुखमरी, कभी कभी अकाल पड़ता है और तरह तरह के कष्ट होते हैं, तो ये अभाव क्यों होता है जब भगवान की आज्ञा से ही होता है?
भगवान की आज्ञा से अभाव होता है, अभाव भी भगवान की आज्ञा से होता है और भुखमरी आदि भी उन्हीं की आज्ञा से होती है।
महाराज, हम ऐसे समझे कि जैसे पृथ्वी महाराज के समय वो अनाज नहीं उग रहा था, तो पृथ्वी महाराज फिर वो उसको प्रयास करके किए, तो इसका मतलब है कि लोग अभी पापी हैं, दुराचारी हैं, इसलिए अनाज नहीं उगता।
हाँ, वही कारण है, लेकिन सबके बाद भगवान के डायरेक्शन में सब चीज होता है। जैसे बच्चा यदि कुछ गलत खा रहा है, उसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो माता भोजन नहीं देती है, मीठा चीज नहीं देती है, और नीम का रस पिलाती है। वैसे ही भगवान इस जगत में जब देखते हैं कि मनुष्य सब दुराचारी हो रहे हैं, तब अनेक प्रकार के तपस्या दे करके, दुख दे करके उनको ठीक करना चाहते हैं, तो अभाव कर देते हैं। ऐसे गीता में उन्होंने कहा है, उपाय बताया है कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से पर्जन्य होते हैं, बादल होते हैं और बादल से वर्षा होती है और वर्षा से सभी जीव जीते हैं। यज्ञ का अर्थ है, भगवान ने बताया है, अपना जो कर्तव्य कर्म है, भगवान ने जो काम हमको करने के लिए कहा है वो यज्ञ है। अपने अपने आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार अपना काम करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यही यज्ञ है। तो यदि व्यक्ति यज्ञ करेगा तो सुखी हो सकता है मानव समाज। तो इस युग में यज्ञों का स्वरूप निर्धारित किया गया है कि यज्ञ संकीर्ण प्रायर जजंति ही सुमेधस, जो अच्छी बुद्धि वाले हैं, सुंदर मेधा वाले, वे इस कलयुग में भगवान गौर सुंदर की आराधना करते हैं यज्ञों के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा। संकीर्तन प्राय यज्ञ, ऐसा यज्ञ जिसमें संकीर्तन भरा हुआ है, अर्थात संकीर्तन करते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ से भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम सभी जीव, मनुष्य सहित सभी जीव सुखी रहेंगे। सबके बाद कोई भी दिक्कत हो, दुख हो, तो उपाय यही है, भगवान का संकीर्तन करें, सभी जीव सुखी होंगे और हम भी सुखी होंगे। कभी अकेले भी यज्ञ होता है, अगर माला लेकर के हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो यह भी यज्ञ है, और 10-20 लोग मिल करके गाते हैं तो वो भी यज्ञ है, और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो वो भी यज्ञ है, वो भी संकीर्तन यज्ञ है। यह श्रवण कर रहे हैं तो यह भी यज्ञ है। इससे भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान के प्रसन्न होने पर किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। जो जरूरी है हमारे लिए वो भगवान देंगे, ये उनका काम है। इस जगत में भोजन देना या सुख से रखना किसी को, ये सब जिम्मेवारी भगवान पर है, और प्रभु अपनी जिम्मेवारी को सदा सतर्क रह करके निभाते हैं। हमें अपनी जिम्मेवारी को देखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। हमारी ड्यूटी है कि हम भगवान का नाम स्मरण करें हमेशा, कीर्तनीय सदा हरि, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध कभी कभी करो जब जरूरी हो, लेकिन स्मरण हमेशा। सर्वेषु कालेषु स्मरण के लिए है, युद्ध के लिए सर्वेषु कालेषु नहीं। वहां भी अर्जुन रात्रि में विश्राम करते थे, सब समय युद्ध नहीं करते थे। नहीं, वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो शैतान है, वो दुष्ट है, वो पाप कर रहा है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, भगवान उसको वो काम नहीं दिए है। किसी भी मनुष्य को किसी जीव की हत्या करने का काम भगवान नहीं दिए।
हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, आपने इतना अच्छा दिया था आपने क्लास। हाँ जी, आपसे आपने कहा ना कि फॉर दिस कलयुग अगर हम करते हैं यज्ञ, भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट, अगर आप आशीर्वाद दे दें कि हम लोग इंडिया में प्रयास करें कि हर आदमी के पास इस्कॉन की पहुंचाए भागवत, हम लोग प्रचार करें, डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर घर में पहुंचाए प्रभुपाद जी की भागवत। तो आप अपना आशीर्वाद दीजिए, हम लोग प्रयास करें, उसमें मिले, पूरी मिले, सक्सेस मिले।
ये हमारे आशीर्वाद से नहीं होगा, भक्तों को परिश्रम करना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद से होता है कुछ। हम क्या आशीर्वाद देंगे? अब भगवान से मांगिए इसको, और श्रील प्रभुपाद से, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से सब हो जाएगा। तो सबके पास भगवत गीता होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा विचार है, और श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित पुस्तकें, इसी से जगत का हित है, कल्याण है। अपनी शक्ति भर प्रयास करना चाहिए, जितना समय मिले, जितना अर्थ शक्ति है, जितनी बुद्धिमत्ता है उसके अनुसार प्रयास करना चाहिए। और भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। कहना श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से सब होगा। श्रील प्रभुपाद जी के प्रयास से इतना प्रचार हुआ तो उनके शिष्य प्रशिष्य ये सब मिल करके करेंगे तो सारे जगत में बहुत अच्छा प्रभाव हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रभाव होगा, प्रचार होगा। लेकिन सभी कामों में हमें चैतन्य महाप्रभु के शुभ आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए।
हरे हरे कृष्ण महाराज। श्री केशव प्रभु का प्रश्न से संबंधित है, जैसा हम सुनते हैं कि कभी कभी कुछ बड़े बड़े देश है जिनने अकाल पैदा करने के लिए आपने उसमें करोड़ों करोड़ अनाज समुद्र में भी डाल देते थे, वो भी कि भगवान का एक कैसे होता है क्या, इसके जरा बताएंगे।
मैं समझा नहीं।
जैसा कभी कभी कोई बड़े बड़े राष्ट्र देश जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, हम सुनते हैं कि कभी कभी इस देश का जो सरकार होते हैं वो करोड़ों करोड़ अनाज समुद्र में बेचे ढाल देते हैं अफल पैदा करने के लिए, वो बात सही है क्या? अगर सही है तो उनकी भगवान का कैसे होता है क्या है, वो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे।
क्या वे अनाज को कर देते हैं? मछलियों के लिए
अकाल पैदा करने के लिए, मतलब दूसरी जगह में ना मिला अनाज, लोग बिना खा के मतलब भूख से मरे, इस प्रकार।
तो जो कुछ करते हैं वो तो उनकी भावना है, लेकिन वो अनाज भगवान दिए हैं पैदा करके, और भगवान दे दिए हैं उसको, चाहे सड़ावे चाहे समुद्र में फेंके या जलावे। अब ये मनुष्य की अपनी कमजोरी है, लेकिन भगवान सब दिए हैं। लेकिन सुनकर आश्चर्य होता है कि समुद्र में फेंकते हैं, तो ये कहां से बुद्धि उनको आएगी।
महाराज जी, आपने जो अभी सूक्ष्म जीव कहा है, अब ये सूक्ष्म जीव जो है जब भगवान द्वारा महाप्रलय होता है तो ये सब सूक्ष्म जीव भगवान में समाविष्ट हो जाते होंगे, जब तब उस सूक्ष्म जीव की वो अचेतन रहता है चेतन रहता है, वही सूक्ष्म जीव जो है भगवान में समाविष्ट हो जाता है। जब महाप्रलय होता है तब ये सब सूक्ष्म जीव जो है हर प्राणी के शरीर में वो तो भगवान में भी समाविष्ट हो जाते हैं, तो उस समय महाप्रलय के समय तो उस सूक्ष्म जीव के स्वरूप चेतन रहता है कि अचेतन रहता है महाप्रलय के बाद?
सब समय चेतन रहता है। भगवान कहते हैं ममांसु जीव लोक के जीव भूत सनातन, जीव सनातन है। महाप्रलय में और सृष्टि के समय में सब समय चेतन है।
तो सूक्ष्म जीव चेतन है, तो जब फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो उसकी महत्व तो और अनेक प्रक्रिया बताई गई। तो जीव में चेतन स्वरूपता है तो महत्व से प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीव तो पहले से चेतन है। तो भगवान द्वारा उस जीव को तुरंत महाप्रलय के बाद उसे प्रारब्ध कर्म के अनुसार फिर जन्म लेना, डायरेक्ट जन्म मिल सकता है, तो उसे प्रक्रिया क्यों कहा है महत्वत्व पंच प्राण जो प्रक्रिया कहा है?
तो जो भी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है सब समय जीव चेतन है,
लेकिन कहा कि जब
वहां तो आदि जो प्रकृति है माया है उनमें जब भगवान प्रविष्ट हो जाते तो उसमें चेतनता आ जाती है। तो आपने कहा कि सब जो तो पहले से ही चेतन है, महाप्रज्ञ
पहले से ही चेतन है। हाँ, जब से जीव है चेतन है, तो ये बीच में चेतन होता है ऐसी बात नहीं।
हरे कृष्णा गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम प्रचार के लिए जाते हैं बच्चे के अनाथ आश्रमों में और स्कूलों में, तो ये बच्चे बहुत प्यार से हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं, पूरा माला जपते हैं, और जो अथॉरिटी है ना वो भी बैठते हैं, पर वो साईं बाबा को बिलीव करते हैं महाराज, कोई और देवता को बिलीव करते हैं, तो वो लोग ये बच्चों को ना प्रभुपाद के शरण में जल्दी आने नहीं देते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि ये हम लोग इसमें बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं, पर ये बच्चे इतने खुश होते हैं जब हम जाते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं, तो ये रुकावट में वो स्लो हो जाता है बच्चे को प्रभुपाद के शरण में लाने के लिए। तो क्या करना चाहिए? वो भी महाप्रसाद देती हूँ उनको, पर
जो अपने जो करने की शक्ति है वो करें, और जितना कर सकते हैं करें। बच्चे अच्छे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन में कृष्ण भावना देनी चाहिए। कहते हैं कि इसी अवस्था में भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। तो आप लोग प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, बार बार कहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी वास्तव में विश्व गुरु हैं। भगवान कृष्ण के संदेश को, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को उन्होंने फैलाया है। तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, और सफलता विफलता पर ध्यान मत दीजिए। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, हानि लाभ समय भूतवा, हानि लाभ में सफलता विफलता में सम रहना चाहिए, सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभ जया जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक दिन में श्रील प्रभुपाद जी जैसा शक्तिशाली हो जाएं और म्लेच्छों को भक्त बना दें। उनकी तो अपार शक्ति थी, भगवान का पावर था उनके पास। वो जहां गए उनकी बात सुन करके, उनका दर्शन करके लोग कृष्ण को स्वीकार कर लिए। तो अपने देश में या जहां भी आप हैं, तो अपना प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से कार्य होता है। बच्चे भगवान का नाम बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और कोई दूसरा बिलीव करता है तो करने दीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए। बच्चों को नाम सुनाना, कीर्तन सुनाना और श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांतों को बताना, ये हमारा धर्म है। हम कितना सफल होंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहां तक कह दिए कि यदि मरोगे तो स्वर्ग का राज मिलेगा, और जीतोगे तो पृथ्वी का राज। दोनों हालत में तुमको अपना कर्तव्य करना है। दसवें अध्याय में, ग्यारहवें में उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुम जीतोगे, लेकिन पहले यही कहे कि मरोगे या जीतोगे, दोनों हालत में युद्ध तुम्हारे लिए श्रेयकर है। तो भक्तों की यही जिम्मेदारी है कि वे जितनी शक्ति भगवान ने दिया है, जितना बोलने की, कीर्तन कराने की, बुक डिस्क्रिप्शन की, उतना करें, जरूर करें।
नहीं महाराज, भगवान हमें बहुत ही मदद कर रहे हैं और बहुत बच्चे बहुत अच्छे से जपा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर मेरी इच्छा ना कि उनको जल्दी से और करीब लाए। इसके लिए हम लोग फिर ग्रीडी हो जाते हैं ना कि सबको हम लोग जैसे करते हैं सबको वैसे ही।
ठीक है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। अगर एक दो बच्चों को भी आपने सही कृष्ण भावना भावित कर दिया तो काम हो गया।
और कसाई उसे उठा के ले जाते हैं जी, ऐसा क्यों हो रहा जी? उनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती जी? भगवान कृष्ण की नगरी में भी देखा है कि गौवें का कोई
अरे बहुत बातें सुनने की हैं, अब क्या क्या कहा जाए। सभी सज्जनों को दुख होता है सुन करके, गौओं की दुर्दशा है, भगवान के धाम में भी तो दुख की बात है। कुछ महात्मा लोग पड़े हुए हैं कि गौओं की हत्या न हो, भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। अब हृदय से की गई प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। थोड़े से समय में सभी विषयों को यहां नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।